क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
परम आदरणीय श्रोतागण, विश्व के हिंदी प्रेमी सहयात्री, सादर नमन। विश्व हिंदी सचिवालय के क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विश्व में साहित्य की कई विधाएं हैं और विशेष रूप से हिंदी साहित्य इतना व्यापक है कि नई नई विधाएं जुड़ती चली जा रही है। आज के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष एक ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स, एमए, एमलिट, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। बीए ऑनर्स में तृतीय स्थान और एमलिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपने 42 सालों से शिक्षण कार्य किया है। वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय ट्रिनिडाद में साल 1999 से 2002 तक अतिथि आचार्य के रूप में कार्य किया। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों का निर्देशन एवं परीक्षण भी किया। इनको पाठ लेखन में विशेषज्ञता भी प्राप्त है। आप इंडो रशियन लिटरेरी क्लब के महासचिव 1994 से 97 तक रहे। इनकी 47 रचनाएं, पुस्तकें विभिन्न विधाओं में प्रकाशित हैं, जिनमें व्यंग्य, नाटक, संस्मरण, कहानी, आलोचना, बाल साहित्य आदि है। इन्होंने संपादन का कार्य भी किया है। आपको परसाई सम्मान, शरद जोशी सम्मान, इंडो रशियन इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड तथा अन्य अलग अलग 3 दर्जनों सम्मानों से विभूषित किया गया है। ऐसे विद्वान कोई और नहीं, वरिष्ठ साहित्यकार एवं विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी हैं। डॉक्टर जी, आपको सादर नमन है। डॉक्टर जी, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आप तो कई विधाओं में प्रतिभा संपन्न रचनाकार के रूप में उभर कर आए हुए हैं। आज हम आपकी नाटक विधा पर विशेष रूप से बात करना चाहेंगे। मैं श्रोताओं के लिए प्रथम प्रश्न यह पूछना चाहूँगा कि आप हमें यह बताएं कि अन्य विधाओं के साथ नाटक पर भी कलम चलाई है। कृपया अपनी नाटक विधा पर प्रकाश डालिए और इस ओर आने की इच्छा कैसे हुई?
शंभू जी, सबसे पहले तो मैं मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो रेडियो सामने आ रहा है, और इसके समृद्ध श्रोता, और बहुत अच्छा लगता है कि विदेश में आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उनके हिंदी प्रेम को प्रणाम करता हूँ। और दूसरा, जिसको अलग अलग जगह के नाम हैं, तो जैसे आपके यहाँ इस तरह से नाम है, तो हमारे यहाँ इसको आकाशवाणी कहा जाता है भारत में। तो मैं, एक कार्यक्रम था अभी, तो उसमें मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा धन्यवाद कि आप आए, तो मैंने उनसे कहा धन्यवाद कि आपने मेरी वाणी को आकाश दिया। अच्छा, तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, आपने मेरे नाट्य प्रेम के बारे में पूछा।
बिल्कुल,
मेरा नाट्य प्रेम अगर मैं कहूँ तो मालूम नहीं अब तक इस धरती पे आए कि नहीं आए, 1964 से है। और 1964 का वो समय है जब सिर्फ आकाशवाणी, रेडियो हुआ करता था भारत में, तब टीवी वगैरह का जो है नशा नहीं था। नशा था तो रेडियो का था, और रेडियो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम था, उसका नाम था उस समय जो हम सुनते थे वहाँ पे, हवा महल।
हाँ, हम भी सुनते थे।
जी जी जी, हाँ, सुनते होंगे। हाँ, और जो भी उस समय का व्यक्ति है वो जरूर सुनता होगा। हाँ, और हमारे पास रेडियो नहीं था, हम निम्न मध्य परिवार से थे हमारे पिता, तो हम 3 भाई, खाना हमारे यहाँ बनता था, तो हम माँ से कहते थे जल्दी जल्दी खाना बनाइए, क्योंकि पड़ोस में जो रेडियो है वहाँ पे हमें हवा महल सुनने जाना है।
अच्छा।
अब जैसे खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो वहाँ से फिर अचानक उसकी ट्यून एक अलग तरह की होती थी, सिग्नेचर ट्यून आप देखें हवा महल की अलग तरह की होती थी, तो वो जैसे ही बजती थी तो समझ लीजिए जैसे कृष्ण की माधुरी जो मुरली सुनती थी गोपिकाएं वो भागती थी, हम तीनों भाई भागते थे।
अच्छा।
तो वहाँ से एक तरह से समझ लें कि मेरा नाटक के प्रति प्रेम जो है वो आरंभ हुआ 64 से। इसके बाद क्या हुआ कि मैं जब बीए में कर रहा था तो वहाँ पे एक युवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ युववाणी, और ये युववाणी कार्यक्रम जो है वही से मेरे लेखन का एक तरह से आरंभ भी हुआ।
अच्छा।
मेरा पहला लेखन जो नाटक से ही जैसे शुरू हुआ, क्या था कि युववाणी में हम लोग वैसे अपने आप जानते ही जैसे यहाँ पर भी कुछ बच्चे आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ युवाओं को बुलाया जाता था, तो मैं अपनी रचना पढ़ के बाहर आ रहा था तो तभी मेरे सामने से एक व्यक्ति आए तो बोले कि आप युववाणी से आए अभी? मैंने कहा हाँ हाँ, तो बोले कि मैंने अभी मैं युववाणी में आया हूँ और मैं नाटक विभाग देख रहा हूँ। और मालूम है वो कौन थे? उनका नाम था कुमुद नागर।
अच्छा।
अमृतलाल नागर के पुत्र।
अच्छा। हाँ, हाँ।
वो थे। तो बोले कि मैं युवा नाटककार जो है उनकी तलाश में हूँ, तो क्या आप नाटक लिखते हैं? तो मैंने कहा हाँ, जबकि मैंने एक आध नाटक लिखा था। तो किस तरह के नाटक लिखते हैं?
अच्छा।
मैंने कहा मनोवैज्ञानिक नाटक, उन्हें साइकोलॉजी जरा बड़ा वो लगता था कि हम होते हैं, तो उन्होंने कहा लिखिए। तो मैंने उनके लिए सबसे पहला नाटक जो है वो लड़ाई लिखा कि युवा किस किस मोर्चे पर लड़ता है।
अच्छा।
फिर मैंने उनके साथ लड़ाई लिखा, फिर दीवारें लिखा, हिंदुस्तानी होने का दुख लिखा, प्रेम पेन लिखा, इस तरह से 5-6 नाटक उनके लिए मैंने लिखे। और वो उस समय बांकी बिहारी भटनागर हिंदुस्तान के संपादक होते थे और उनके पुत्र मनोज भटनागर उन्होंने उसमें हीरो की का अभिनय किया। तो वहाँ से मेरा नाटक प्रेम शुरू हुआ।
अच्छा।
रेडियो से। और फिर उसके बाद जो है आकाशवाणी में ही बाद में थोड़ी बाद में एक नेशनल चैनल होता था, वहाँ पे सोमदत्त शर्मा एक बहुत अच्छे कवि हैं, वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझसे चुनौती दी कि आप जो पुरानी कृतियाँ हैं उनका नाट्य रूपांतर करें।
अच्छा।
तो जैसे मैंने पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, उसका क्या मृगनयनी,
अच्छा,
साकेत, इन सबके नाट्य रूपांतर किए और वो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के थे, तो वो वहाँ पे प्रसारित हुए। फिर हमारे कॉलेज में उन लोगों को, कॉलेज वालों को आवश्यकता थी कि नाटक खेला जाए युवा लोग, तो तब मैंने एक नाटक लिखा सोते रहो। फिर उसके बाद जो है मैंने एक नाटक लिखा सीता अपहरण केस। फिर उसके बाद एक नाटक लिखा मैंने अभी जो आया है, मेरे तीन नाटक हैं।
अच्छा।
एक क्यों चुप तेरी महफिल में है।
अच्छा।
तो ये तीन नाटक मेरे हैं।
अच्छा।
तो ये मेरी छोटी सी नाटक की यात्रा मैंने आपको बताई, वैसे तो लंबी यात्रा है पर छोटी यात्रा मैंने बताई। जी
बहुत अच्छी यात्रा है और नाटक विधा जो है वो तो आम जनता की विधा है।
जी जी।
अच्छा डॉक्टर जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे, आप नाटककार हैं, तो एक नाटककार को रंगमंच की जानकारी कहाँ तक उचित है?
शंभू जी, ऐसा है, एक तो मैं ये कहूँगा कि आप मुझे डॉक्टर जी मत कहें, लगता है जैसे आप चिकित्सक से बात कर रहे हैं।
अच्छा,
प्रेम जन्मे जय कहें।
अच्छा,
जो नाम है तो ठीक। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये लगभग ऐसे ही है कि एक सैनिक अगर युद्ध क्षेत्र में जाता है, तलवार लेके जा रहा है या हथियार लेके जा रहा है, और अगर उसको युद्ध क्षेत्र की जानकारी नहीं है तो वो लड़ नहीं पाएगा।
बिल्कुल।
तो इसी तरह से एक नाटककार को अगर प्रेक्षागृह का पता नहीं है, अगर उसके बारे में जानता नहीं, अगर तो वो सिर्फ लिखने के लिए लिख रहा है, उसको नहीं चाहिए कि नाटक वंचित हो, तो नाटककार को जो है, और ये भी हुआ मेरे साथ, मेरे एक नाटक जो है वो करीब समझिए 15 संस्थाओं ने खेला, और हर संस्था के जो डायरेक्टर थे वो उससे बात करते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, मैं उनसे कहता था आप चाहे मुझे टिकट मत दें, मैं आऊँगा और आपका मंच देखूँगा और आपके पात्र देखूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से मंच की दृष्टि से आप किस चीज़ को, सीन को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, क्या दृश्य पात्र में किस तरह से बोला जाए। तो होना ये चाहिए, मेरा भी मानना है, हो नहीं पाता क्योंकि नाटककार भी व्यस्त है, तो होना ये चाहिए कि जब नाटक की रिहर्सल हो तो नाटककार उपस्थित हो वहाँ पर उसकी उपस्थिति ऐसी ना हो कि निर्देशक को इरिटेट करे, उसको बार बार कचोटती रहे। मेरा मानना ये है शंभू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, कि मेरा मानना यह है कि नाटक लिखना लेखक का काम है, पर वस्तुतः ये डायरेक्टर की, निर्देशक की विधा है। ये उसकी फॉर्म है, वो आपको विजुलाइज करता है अपने हिसाब से, आपके पात्र को विजुलाइज करता है, उनको देखता है, तो उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। तो रहता है ध्यान में प्रेक्षाग्रह सारी चीज़ें, पर सारा जो फाइन अंतिम निर्णय जो होता है वो समझ लीजिए कि निर्देशक का है।
और मैं तो यह भी सोचता हूँ कि आजकल नई नई टेक्निक आए हुए हैं, साउंड सिस्टम है, लाइटिंग है, और भी कई कंप्यूटर के माध्यम से कई प्रकार के सीन वे लोग प्रस्तुत कर देते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लेखक के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह जाने रंगमंच क्या है और कैसे उसमें खेला जाता
नहीं है। ये जो बात आपने उठाई ये हर जगह हुआ है। नई टेक्निक जो है, अब जैसे मेरा छोटा बेटा है विदित उसका नाम है, वो एनिमेशन में है। अब वो ये बताता है, मुझे पता चलता है कि पहले फिल्म की जो शूटिंग करने के लिए बाहर लोकेशन में जाते थे, अब आप अपने यहाँ ही उसको सीन को क्रिएट कर लेते हैं, एनिमेट कर लेते हैं। आप जो है अब हीरो का मान लीजिए बाल थोड़ा सा ऐसा हो गया तो उसके बाल को ठीक भी कर लेते हैं आप। तो ये तकनीक जो है, क्योंकि तकनीक जब विकसित होती है तो हर क्षेत्र में होती है,
बिल्कुल
टेक्नोलॉजी तो हर क्षेत्र में जाएगी, तो नाटक में भी जाती है, वहाँ पर भी जाती है। और जो सवाल आपने किया, निश्चित रूप से ये ज्ञानवर्धक प्रश्न है लोगों के लिए
जी। इस पर काफ़ी भी बोला जा
जी हाँ काफ़ी बोला जा सकता है जी।
अच्छा प्रेम जी, मैं प्रेम ही कह रहा हूँ।
जी हाँ जी।
अच्छा, आजकल टीवी पर सीरियलों की एक बाढ़ सी आ गई है
जी,
और उसके आने से हम देख रहे हैं कि नाटक में कुछ कमी या दिलचस्पी घट गई है। आपकी दृष्टि में आज की स्थिति नाटक के लिए क्या है?
देखिए, आज की स्थिति जो है ना, उसके सिर्फ एक कारण नहीं है, मेरा मानना ये है, उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति व्यक्तिगत हो गया है, अपने में सिमट गया है, और वो पसंद ये करता है, खासकर शहरी लोगों की बात कर रहा हूँ। गांव में तो अभी भी आप जाएंगे तो थोड़ा खुलापन और मिलना जुलना, चौपाल ये सब मिल जाएगा। और कारण उसका दोष नहीं है, क्या है कि वो सुबह से निकल जाता है काम करने के लिए, शाम को आता है 6-7 बजे, घर की जिम्मेवारियां हैं उसके सामने, तो सोचता है कि मैं, और सुविधाएं हैं एक बड़े से सोफे पे, कहीं से कोई सामान मिल मंगा के खाऊं और साथ में चीज़ें देखूं। तो अब अगर मान लीजिए वो टिकट ले लेता है नाटक की 7 बजे और उसका काम आ जाता है तो वो 7 बजे नहीं जा सकता, तो ये उसकी विवशता है। पर नाटक मूलतः अगर आपको आनंद लेना है, वो जो है मूलतः वो मंच की विधा है। वहाँ पे देखिए उसका अंतर क्या है, टीवी देखते हुए मैं उसके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता हूँ। जब मैं मंच पे बैठता हूँ, नाटक देखता हूँ, तो मैं उस नाटक का हिस्सा होता हूँ। और हमारे बहुत सारे ऐसे नाटक हुए हैं जैसे मेरा ही नाटक था, उसमें उतर कर मंच से व्यक्ति दर्शकों के बीच में आ जाता है, तो उससे क्या वो उसको अपना हिस्सा बनाता है, तो वो जीवंतता रहती है उसमें। पर कारण वही है, अब जैसे मोबाइल ने हमें सीमित कर दिया है, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा समय मिले तो हम व्हाट्सएप खेल लें, हम फेसबुक खेल लें, तो समय एक तो भागदौड़ की जो जिंदगी है, जीवन है, और तीसरा एक कारण जो बना अभी बदलते समय में जो बात कर रहा हूँ वो कोरोना के कारण, आप देखिए कि सब ऑनलाइन हो गया।
बातें इतनी दिलचस्प है कि रुकने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन घड़ी की सुइयां बता रही है कि हमें रुकना चाहिए
जी।
तो प्रेम जी, मैं जानता हूँ कि 47 पुस्तकों के रचयिता के पास इतनी सारी बातें हैं कि पूछते पूछते हो सकता है शाम हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। श्रोतागण, आज हमने क्षितिज कार्यक्रम के माध्यम से भारत के डॉक्टर प्रेम जन्मेजय से परिचित करवाया। उनकी मूल्यवान जानकारियों से आपको अवश्य लाभ हुआ होगा, ऐसी हमारी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है। डॉक्टर जी, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आपको आभार प्रकट कर रहे हैं और यही आशा कर रहे हैं कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त होते रहें, और अपने श्रोताओं के प्रति भी आभार प्रकट कर रहे हैं और आज के हमारे तकनीकी सहयोगी श्रीमती अंजू जी को भी धन्यवाद कहेंगे। एक और कार्यक्रम तक हमें आज्ञा दीजिए।
मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज के लिए और शुभकामनाएं कि उसको नए नए क्षितिज मिलें।
बिल्कुल जी, तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।